बाबा की मुरली सभी ने सुनी है, उस पे चर्चाएं भी हुई होंगी, हुई हैं चर्चाएं। अव्यक्त मुरली एक बहुत प्रिय बात जो आप सबको भी प्रिय लगी होगी, बच्चे फायदा नहीं उठाते। किस चीज का? किसका फायदा नहीं उठाते? पता है माताओं को, बहनों को पता है किसका फायदा नहीं उठाते? हम सब दुनिया में तो फायदा फटाफट उठाते हैं। दुनिया में यदि हमारा कोई मित्र संबंधी भी MLA भी बन जाए तो क्या करते हैं? हम पूरा फायदा उठाते हैं। मंत्री बन जाए तो मंत्री वो बनेगा लेकिन हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे, बहुत फायदा उठाते हैं। आजकल उल्टा उठाते हैं फायदा, गलत काम करते हैं लोग। बाबा ने कहा हिम्मत का तुम एक कदम बढ़ाओ तो हजार कदम बाबा के। दृढ़ता हिम्मत, इसमें बाबा बंध जाता है। पीछे बाबा ने कहा था ना, बच्चे बड़े होशियार हैं, हिम्मत रखेंगे तो मदद मिलेगी, तो हिम्मत रखते हैं। ये भी होशियारी है, बुद्धिमानी है। बाबा बंध जाता है यदि हम हिम्मत रखें और दृढ़ता रखें। अब कौन कितना बांधता है उसको, तो बाबा ने भी आश्चर्यवत होके कहा होगा कि फायदा नहीं उठाते। भगवान को खुद सिखाना होता है ना हम सबको, मुझे कैसे बांधो, मेरा कैसे फायदा उठाओ, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करने आया हूँ, समझो उसे और उसका फायदा उठा लो। तो उठाएंगे हम सब फायदा? उठाएंगे? कैसे उठाएंगे? स्थूल चीज तो है नहीं, स्थूल बातों को तो हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। सबसे पहली चीज, हम अपने अंदर ये बहुत गहरा नशा चढ़ाएं कि वो मेरा है। ये एक दिन का काम नहीं है, रोज बार बार वर्षों तक स्वयं को ये फीलिंग देनी है वो मेरा है। और जो जितनी गहराई में इस चीज के पहुंच जाए उतनी ही समीपता का, अपनेपन का बाबा की ओर से अनुभव हो। जो भगवान है वो मेरा है, सोचने की बात है। बार बार ये संबंध याद दिलाने की जरूरत है। तो जिसका भगवान ही अपना हो गया हो उसे क्या क्या फायदे होंगे, वो उससे क्या क्या लाभ उठाए, इस पर हम अपने विवेक का प्रयोग करें। ये हर एक को स्वयं करना है, कहाँ हम अपने विवेक को किस तरह यूज करें, कहाँ कहाँ उसका फायदा उठाया जाए, हर फील्ड में, लौकिक में भी और अलौकिक में भी। क्योंकि अब हम सभी का लौकिक भी अलौकिक है या अलौकिक रहा है। देखो, सबको कम से कम इतना संकल्प रहता है हमारा जो काम धंधा है, धन संपत्ति है, वो बाबा की है। एक सूक्ष्म संकल्प में सब ये रखते हैं और रखना ही चाहिए। तो ये अलौकिकता, मेरापन बाबा से, इस पर सभी ध्यान देंगे। फिर हिम्मत और दृढ़ता, किसमें हिम्मत की जरूरत होती है हमें? कहाँ हिम्मत चाहिए हमें? ईश्वरीय नियमों को पालन करने में। और कहाँ चाहिए? जीवन के कम से कम 100 फील्ड हो सकते हैं जिसमें हमें हिम्मत चाहिए। आपको कह दिया गया कि भाई आपको यहाँ जाके इस कॉलेज में भाषण करना है, आपको आता नहीं, आपको डर लग रहा बच्चे तो सुनेंगे नहीं, देखो बहनें सभी सोच रही, आपको ऐसा मौका मिल जाए सजनी बहन क्या करेंगी, जाएंगे ना, बस जाएंगे, हिम्मत रखेंगे कि हमें करना है। अगर मान लो टॉपिक पे हम न भी बोलना चाहते हो तो हमारे पास ज्ञान का खजाना है, हम बाबा का आह्वान करेंगे, उसे याद करेंगे, कुछ तैयार करेंगे, पर पहली जरूरत है हिम्मत, तो बंद जाएगा ना वो, मदद मिल जाएगी। और अगर कोई पहले डरे कि अपने से तो नहीं होगा भाई, हमने कभी किया नहीं कॉलेजों में भाषण, बच्चे आजकल के बड़े तूफानी, कुछ कुछ गड़बड़ कर दी तो इज्जत खराब हो जाएगी हमारी, पहले डर के बैठ गए तो कुछ नहीं होगा। ये तो बात कॉलेज की, मान लो कहीं थोड़ा बहुत ही ज्ञान देना, आपके सामने बच्चे हैं छोटे प्राइमरी के, उनको आपको पढ़ाना है कुछ, वहां तो डर की बात नहीं, बच्चे हैं, लेकिन हिम्मत की जरूरत है। कोई ये सोच लेता है छोटे बच्चे 5 साल के 6 साल के क्या समझेंगे, हमें ऐसे ही कह दिया, हमारी वैल्यू ही नहीं, छोटे बच्चों को पढ़ाने भेज दिया हमें, बस हिम्मत नहीं रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जीवन में बीमारी आ गई, सवेरे भी उठना है, मुरली भी सुननी है, काम भी करना है, कुमार हैं, अकेले हैं, कुमारों को भारी लगता है बीमार हो गए, खाना बनाए, चाय बनाए, नौकरी पर जाएं, क्या जरूरत, क्या मदद करेगी, हिम्मत। हिम्मत से शक्ति आती रहेगी, शरीर में भी और मन में भी, बुद्धि में भी शक्ति आ जाएगी। जीवन में समस्याएं आ गई, बिल्कुल अंधकार दिखाई देने लगा, कुछ नहीं दिख रहा है क्या होगा, तो भी हिम्मत कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो गड़बड़ आज है वो कल ठीक हो जाएगी, जो कुछ आज है वो कल समाप्त हो जाएगा, ऐसे संकल्पों से हिम्मत रखकर चलें। माया को जीतना है हमें, सबसे बड़ी हिम्मत की जरूरत यहाँ रहती है। माया की बहुत सारी बातें हैं, 3 तो बाबा ने सुना दी थी, अलबेलापन, आलस और याद है ना माताओं को, तीसरा क्या था, सभी इस बाजी में होशियार हैं या नहीं, सभी होशियार होते हैं बहानेबाजी में, बहन जी पूछेंगे आज मुरली में नहीं आए तो बहुत बहाने हैं, भाई ये था वो था ये हो गया था वो, बहुत सारी बातें हैं, कई तो इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, ऐसा बहाना देंगे बिल्कुल रियल, परंतु नुकसान हमें होगा ना, और ये बहाना देने की आदत आत्मा को दिनों दिन कमजोर करेगी। तो माया को जीतने में सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ती है, लेकिन यदि हिम्मत रखते हैं तो इसमें बाबा की मदद बहुत मिलेगी। 1 का 1000 गुना तो बहुत बड़ी चीज है ना, हम इस रेशो पर जरा ध्यान दें, 1 कदम और उसके 1000 कदम छोटी बात नहीं हुई, 1 के 2 या 10 तक भी होते तो भी बहुत लगता है, 1000 गुनी मदद हो रही हो तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। फायदा उठाएंगे हम ताकि कहीं भी हार न माने, अंत तक भी हार न माने, हिम्मत न हार जाए, कुछ भी होता रहे, हार भी होगी जीवन में, जीत भी होगी, पर क्योंकि हमारे साथ कौन है, ये नशा बहुत सुंदर है, हमारे साथ सर्वशक्तिवान है, ये बात हमारी हिम्मत को बढ़ाती रहेगी। देखो मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं आपको, कल का छोटी सी बात है, मुझे बुखार चल रहा है, मैं यहाँ ही क्लास कराई थी अब से 5-6 दिन पहले, तो पंखे की हवा जो लगी, कपड़े कुछ ज्यादा नहीं पहने हुए थे तो बुखार हो गया, तो ठीक नहीं हो रहा था, तो मुझे कहा उदयपुर चलना है आज मशीन देखने के लिए, आज हम होके आए तो रात ही आना था, मुझे 9 बज गए, बहुत लोग मिलने आते रहे, 5 से 9 4 घंटे में बिजी रहा, बुखार में बिजी रहने से थकान भी हो जाती है, तो मुझे बार बार प्रेरणा आ रही कि नहीं जाओ, और जब मुझे ऐसी प्रेरणा आती है तो मैं उसको मानता हूं, क्योंकि वो सत्य होती है। मैं ऐसा बहुत बार देख चुका हूं कि मुझे मिलने वाली प्रेरणाएं सत्य होती हैं। ये नहीं जाओ, रात को अकेला जाना है 9 बजे के बाद, लेकिन मुझे जाना है क्योंकि सवेरे 5 बजे यहां से उदयपुर के लिए निकलना है। अब मैं क्या करूं? आंतरिक प्रेरणा हो रही है कि नहीं जाओ, कुछ गड़बड़ हो सकती है, और जाना है तो मुझे संकल्प है। वही मुझे याद आ रहा कि हिम्मत रखनी ही है, छोड़नी नहीं, मुझे ड्राइविंग करके आना है, अकेले आना है। तो मैंने हिम्मत रखी और जहां टैक्स देते हैं वहां तक ही मैंने समझ लिया कि विघ्न है रास्ते में। दो चार विघ्न की बातें आई, गाड़ियां आई, बिल्कुल बस वाला टकराने लगा, और मैं समझ लिया कि विघ्न है, इसलिए बाबा जैसे मुझे संकल्प दे रहा है कि नहीं। तो मैंने साथ में, और मुझे जाना है, ये नहीं कि हम बाबा की नहीं मान रहे हैं, लेकिन जाना है, तो मैंने ये 2 संकल्प किए। बाबा को कहा कि अब तुम जरा ऊपर से नीचे आ जाओ मेरे साथ, विघ्न है मुझे दिख रहा है, और तुम मेरे साथ आ जाओ। क्योंकि मैं जो सबको ये सिखाता हूं कि सब अभ्यास करें कि सर्वशक्तिवान साथ है, तो इसके अच्छे अनुभव होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। योग एक तरफ रख दो आप, केवल ये संकल्प, ये भी तो योग हो गया ना वैसे, पर वो योग जिसमें सब कहते हैं कि लगता नहीं, साथ है। फिर दूसरा अभ्यास जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मैं विघ्न विनाशक हूं। ये दोनों जो किए तो थोड़ी देर के बाद मुझे फील होने लगा कि लाइन क्लियर हो गई, बहुत अच्छा रहा। हम सभी, मैं आपको अनुभव ये केवल इसलिए सुनाया कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, इस नशे को रखने के लिए, इस फीलिंग को बढ़ाने के लिए हमें किसी मेहनत की तो जरूरत नहीं है ना, इसको बढ़ाएं हम सब। देखिए, एक बात हमारे लिए ये होती है कि मुझे बाबा से कंबाइंड रहना है, बाबा बोलते रहे ना मुरली में, हम इस संकल्प को दूसरी तरह से ले लें, मुझे बाबा से कंबाइंड रहना, ये बात हमें भूल जाती है। लेकिन हम ये तो याद रख सकते हैं कि बाबा मुझसे कंबाइंड है, बात वही है, हम उससे कंबाइंड हैं, वो हमसे कंबाइंड है, तो बहुत मदद मिलेगी। और ये संपूर्ण सत्य है ना, है या नहीं? बाबा ने कभी हंसी में कहा था नजदीक में 2-3 साल में कि बच्चे तो बाप से भी ज्यादा पावरफुल हैं, याद है ना? मैं कई बार यहां सुनाता हूं, मुझे बड़ी प्रिय लगती है बात कि बाप कहते हैं मैं तुमसे कंबाइंड हूं, कंबाइंड माने बिल्कुल जुड़े हुए हूं, जुड़ा हुआ हूं, और बच्चे इतने पावरफुल हैं कि मुझे भी अलग कर देते हैं, है ना? पावरफुल हो गए ना, सर्वशक्तिवान को हटा दे, ऐसी शक्ति किसमें होगी? बच्चों में होगी ना। तो यदि हम ये याद रखने लगे कि सर्वशक्तिवान मुझसे कंबाइंड है, सिर पर है, छत्र है, साथ है, तो बहुत अच्छे अनुभव जीवन में होंगे। तो इस पर सभी मास्टरी करें, और मैं तो यही कहता हूं कि ज्यादा लंबी छोड़ी बात न करके 15 दिन का अपना एक प्लान बना लें सभी, 15 दिन रोज 10 बार ये नशा स्वयं को दे दें, सर्वशक्तिवान मुझसे कंबाइंड है, वो मेरे साथ रहता है। 15 दिन के बाद ये बात बड़ी नेचुरल हो जाएगी, 15 दिन का अभ्यास काफी होता है, और फिर ये बात याद रहने लगेगी। कहीं भी आप घर से बाहर निकलेंगे याद आएगा, याद करना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, इसको याद कर लें। कोई कठिन काम सामने है, कोई परिस्थिति है, याद कर लें। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसको याद करते रहेंगे तो बहुत प्रैक्टिकल फीलिंग्स होती रहेंगी। मुझे इसके महत्व का तब से बहुत पता चला, बाबा ने मुरली में कहा, साकार थी अव्यक्त थी मुझे याद नहीं, यदि तुम ये स्मृति रखो कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो सर्वशक्तिवान की शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहेंगी। तो बहुत सुंदर बात है, बहुत सहज योग है ये। हम इसकी सुंदरता को, इसकी सहजता को समझते हुए इसको अपने जीवन में बढ़ाएंगे। अब हम एक दूसरी बात पर आ जाएं, अब इसी में वो बात भी जुड़ जाएगी कि हमें बाबा का फायदा होता रहेगा। जो बाबा ने कहा ना, फायदा नंबर वार उठाते हैं, तो सर्वशक्तिवान साथ है, जब वो साथ रहेगा तो कुछ करेगा ना, वो खाली नहीं रहेगा कि साथ है और कुछ नहीं करेगा। जैसे श्री कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है ना, उसने कहा भाई मैं रथ तो हांकूंगा पर युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन उसका रथ पे बैठना ही सब कुछ था ना, शस्त्र की जरूरत ही नहीं थी। तो हम सब भी इस बात को जरा गहराई से ले आए कि बस वो साथ रहेगा तो बस वही करेगा, फिर सब कुछ हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। हम सबको बाबा ने काम दिया। दूसरी बात, कौन सा काम दिया? बहुत अच्छा नाम लिया मधुबन वालों का, पर वो हम सबके लिए काम है। याद है ना, व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। हम एक स्लोगन बना लें अपने पास, बाबा के एक महावाक्य को स्लोगन बना लें, व्यर्थ से मुक्त होना ही संपूर्णता है, है ना। और ये व्यर्थ ही ऐसी चीज है जो आत्मा को मंजिल तक नहीं जाने दे रहा है, जो आत्मा की शक्तियों को नष्ट कर रहा है। सब जानते हैं, यदि हम एक दिन या एक घंटा अपनी चेकिंग करें तो कितना व्यर्थ है हर मनुष्य के पास, व्यर्थ या अनावश्यक। ऐसे संकल्प हमारे बहुत चलते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। मनोविज्ञान तो कहता है 90% संकल्प, 90, 100 में से 90 व्यर्थ चलते हैं सबके। 10% काम के चलते हैं तो भी मनुष्य कितने बड़े बड़े काम कर रहा है। और अगर सारे के सारे संकल्प अच्छे चलने लगे तो मनुष्य की कार्य शक्ति कितनी बढ़ जाए। हम लक्ष्य बना लें कि हमें व्यर्थ से स्वयं को धीरे धीरे मुक्त करना है। हम सोचें आज ही मुक्त करना है तो शायद टेंशन हो जाएगी, इसलिए हम धीरे धीरे स्वयं को व्यर्थ से मुक्त करेंगे। पहली चीज यही है कि हमें दृढ़ता पूर्वक लक्ष्य बना लेना है कि हमें व्यर्थ से मुक्त होना है। अब इसमें दो तरह से सभी काम करेंगे। मैं आपके लिए होमवर्क भी रख रहा हूं और कुछ चीजों पर हम चर्चा भी करेंगे। 10-12 बातें आप लिखें, सभी को चिंतन करना है। मैं ये नहीं कहूंगा जो चिंतन करना चाहते हैं वो करें, सभी करेंगे ये काम क्योंकि ये सभी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। 10-12 परिस्थिति लिखेंगे आप जिनमें हमें व्यर्थ संकल्प चलते हैं। उदाहरण के लिए, कौन सा उदाहरण? दूसरे को देखकर परचिंतन के व्यर्थ संकल्प, एक बात हो गई। कहीं हमारी निंदा ग्लानी हो गई हो उसके व्यर्थ संकल्प, हम सेवा करने गए हो कहीं, बहुत मेहनत की हो, पैसा भी लगाया हो, सफलता नहीं मिली हो, लोगों ने विरोध किया हो, उसके व्यर्थ संकल्प। परिवार में, आपके परिवार में कुछ अनहोनी घटना हो गई हो उसके व्यर्थ संकल्प, पास्ट के व्यर्थ संकल्प, भविष्य की चिंताओं के व्यर्थ संकल्प, इम्प्योरिटी के कारण व्यर्थ संकल्प, मोहों के कारण व्यर्थ संकल्प, मैं और मेरे के कारण व्यर्थ संकल्प, ऐसी लिस्ट बन सकती है लंबी चौड़ी। सबके पास सब न भी हो पर 10-12 है परिस्थिति हर एक के पास रहेंगी। काम बहुत हो गया, दूसरे मदद नहीं कर रहे, व्यर्थ संकल्प। हमने काम बहुत अच्छा किया, परिणाम गड़बड़ हो गया, व्यर्थ संकल्प, बहुत मेहनत की थी बिजनेस में लॉस हो गया, व्यर्थ संकल्प। तो व्यर्थ संकल्पों का तो एक सागर है ना मनुष्य के पास, यदि हम ये शब्द यूज करें, व्यर्थ संकल्पों का भी एक सागर है। एक एक को तो चेक भी नहीं किया जा सकता, लेकिन संकल्प हमारी स्थिति पर तुरंत प्रभाव दिखाता है ना, तुरंत। इसलिए मैं ये कहूंगा वो मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिमान है सारे संसार में और ब्राह्मण संसार में भी, जिसने श्रेष्ठ संकल्पों का आनंद लेना सीख लिया हो। श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जितना हमारे पास है संसार में किसी के पास नहीं है। सन्यासी, विद्वान, आचार्य, ऋषि, उनके पास श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना नहीं होता। जो उस फील्ड में रहे हैं वो जानते हैं, उनकी साधना भी होती है संकल्पों को शांत कर देना, जीरो पर ले आना, निर्संकल्प कर देना। और हमारी एक साधना है श्रेष्ठ संकल्पों का आनंद लेना, वो भी एक बहुत बड़ा आनंद है जो आत्मा को न केवल शक्ति देता है लेकिन जन्म जन्म के लिए हमारे विचारों को महान कर देगा। सभी ध्यान दें इस बात पर, जिस आत्मा ने संगम युग पर श्रेष्ठ संकल्पों के बीज मन में डाल दिए, ये बीज 84 जन्म फलीभूत होते रहेंगे। और सभी जानते हैं कि विचारों की महानता, विचारों की सुंदरता ही जीवन के सुखों का आधार है, सफलता का आधार है, शक्तिशाली बनने का आधार है, उमंग उत्साह हिम्मत का आधार संकल्प ही है ना। तो एक तो सभी भाई बहने कुछ अच्छे संकल्प लिखा करें, आप अपने जीवन को बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ बना दें, रोज एक सुंदर विचार लिखें, किताब में देख के नहीं, बहुत सारे छपे हुए भी है ना पूरे साल के, उससे भी अच्छे लिखे जा सकते हैं। आप अपने लिखें, अपने क्रिएट करें, हर एक व्यक्ति अपने संकल्प क्रिएट कर सकता है क्योंकि ज्ञान का भंडार सभी के पास है। कर सकते हैं या नहीं, माताएं कर सकती हैं? मैं ये देखता हूं आप ये सब ज्ञान से भी जान सकते हैं कि हरेक के पास अच्छे संकल्प होते ही हैं, लेकिन कुछ व्यर्थ का फोर्स कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अच्छे संकल्प दब जाते हैं। बस उन्हें दबने न देकर इसलिए एक पुरुषार्थ कर लेना है। देखिए हमारे पास ज्ञान के खजानों में अव्यक्त मुरलियां एक बहुत ही सुंदर खजाना है, साकार मुरलियां भी हैं, पर क्योंकि अव्यक्त मुरली टॉपिक पर चलती है प्राय, आप एक अव्यक्त मुरली रोज पढ़ने को नियम बना लें, साकार यहां आकर सुने, सेंटर में सुने, और अव्यक्त मुरली स्वयं पढ़ें। इससे आपका ज्ञान का खजाना बढ़ता जाएगा, जो सूक्ष्म रहस्य हैं वो क्लियर होते जाएंगे। सूक्ष्म रहस्य है ना बहुत, ज्ञान फिलोसोफी में भी सूक्ष्म राज होते हैं। बाबा हमें क्या देखना चाहता है, बाबा को क्या प्रिय है, ये सब हमें मुरलियों से पता चलता है ना। देखो वो भगवान है, प्यार तो वो सबको ही करेगा, सब उसके बच्चे हैं ना, चाहे पापी ही क्यों ना हो, प्यार तो वो उन्हें भी करेगा। जब वो उसके सामने आ जाएगा कोई आतंकवादी, वो उसे ये नहीं कहेगा तू बहुत पापी हट जा मेरे आगे से, कहेगा ना तुम बहुत प्यारे बच्चे हो बाप के। और ये कहने से ही हो सकता है वो आतंकवादी देवता बन जाए। तो वो तो भगवान है प्यार का सागर, वो तो सबको प्यार देता, जैसे माँ अपने सभी बच्चों को प्यार करती है ना, चाहे वो कैसे भी हों। लेकिन सच्चा प्यार कौन खींच सकता है उसका, ये हमें मुरलियों से पता चलता है ना, किसको वो चाहता है, किस पर वो रोज दृष्टि डालता है, किसका निर्माण वो स्वयं करता है, ये हमें मुरलियों के गुह्य रहस्यों से समझ में आता जाएगा। इसलिए जो एक बहुत बड़ा खजाना हमारे पास है, खान है ना, अनलिमिटेड खान, यहाँ की खान तो लिमिटेड भी हो सकती है। कोई सुना रहा था ना, राजस्थान में बहुत सारा सोना निकल गया है, भारत वालों के लिए बड़ी खुशी की बात। राजस्थान में यही कहीं उदयपुर के आसपास ही बांसवाड़ा, बहुत सोना निकला है ना, कितने करोड़ टन है, 4 करोड़ टन, तो बहुत है, तो स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे ना, तेजी से बढ़ने लगे हैं। तो स्वर्ग में तो इतना सोना आ जाएगा कि बाबा कहते हैं पत्थरों की तरह पड़ा रहेगा और तुम उनके ही मकान बना लोगे। तो हम सभी इस खजाने की जो खान हमें मिली है, सागर के समान खान, इसका फायदा उठाएं। मैं सभी भाइयों को देखकर एक बात सदा ही कहता हूं, बात माताओं के लिए भी है पर भाइयों के लिए ज्यादा उपयोगी है वो, हर व्यक्ति क्या सोचता है, आप सब क्या सोचते हैं कि बहुत काम है लौकिक में, बहुत जिम्मेदारियां हैं, सवेरे से शाम तक कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई परेशानी रहती है, ऐसे में ये सब बहुत अच्छा करना मुश्किल होता है ना सबकी ये बात। भाई बातें ही ऐसी हैं संसार में, अब कलयुग का भी अंत आ गया तो ऐसी ऐसी अनेक बातें सामने आती हैं कि कुछ किया नहीं जाता, अलौकिक में भी मुश्किल होता है। रोज मुरली सुन ले वो भी बड़े भाग्यवान आत्माओं की बात है, बाहर रहते हुए सब मुरली भी रोज नहीं सुन पाते, और अगर मुरली सुनेंगे तो भागे भागे आएंगे और सुन के भागे भागे जाएंगे, तो क्या होगा, बुद्धि में नहीं ठहरेंगी वो बात, क्योंकि बुद्धि एक ऐसा पात्र है जिसके लिए मन बहुत शांत होना चाहिए, तब ये पात्र इस खजाने को समा पाता है, नहीं तो साथ साथ बाहर जाता है। मैं आप सभी को एक बात कहता हूं, बाबा की बहुत सूक्ष्म बात है ये, माताएं भी ध्यान दें और इसको रियलाइज करें कि यदि हम ज्ञान योग में, इस सब बातों में, चिंतन में, अच्छे संकल्पों में, स्वमान में समय देंगे तो जीवन की ये समस्याएं रहेंगी नहीं, हल्का हो जाएगा जीवन। पीछे बाबा ने जब कहा, दो बातें मैं बड़ी क्लास में भी सुनाई थी, फिर सुना देता हूं, अव्यक्त मुरली में आई एक मास पहले, एक सेकंड में देह में आना और एक सेकंड में देह से परे ऊपर पहुंच जाना, ये अभ्यास है संपूर्णता को समीप लाने का। और दूसरी बात कही, संपूर्णता को और समय को समीप लाने का, सोचें सभी कितने राज होंगे इसमें। दूसरी बात कही, यदि तुम इस संसार को साक्षी होकर देखो तो जो काम एक मास में होने वाला है वो एक घंटे में हो जाएगा, भगवान हो अच्छे ना, संपूर्ण सत्य ही है ना, हम उसको कितना समझते हैं ये हमारे ऊपर है, करके देखना चाहिए हमें अपने जीवन में, क्या इन दोनों अभ्यास से हमारे जीवन की कठिनाइयां समाप्त होती हैं, होंगी। कभी बाबा ने ये भी कहा, यदि तुम साक्षीपन की सीट पर बैठे रहो तो जीवन की सभी समस्याएं इस सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। ये बहुत सुंदर बातें हैं, बहुत बड़ी बातें भी हैं, और हमें इनके अनुभवी बनना ही चाहिए, हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा संसार में। तो आपके ग्रस्त जीवन में जो भी समस्याएं, दुविधाएं हैं, आपके संकल्प शक्ति उसमें जाती है, समय उसमें जा रहा है, उसको बचाने का ये तरीका है कि कुछ समय आप स्वयं के लिए दें। आप एक ही यदि परिवार से ज्ञान में हैं, तो एक भी काफी है। एक काफी है या नहीं? हर गांव में, हर टाउन में एक इष्ट देवी होती है, ग्राम देवी। याद है, माताओं को पता, सब जानते हैं, गांव गांव की, शहर शहर की। एक इष्ट देवी सारे गांव के लिए काफी काम करती रही, युगों से करती रही थी, भक्ति में ये सब चलता आया। तो एक छोटे घर में यदि एक इष्ट देवता हो तो क्या उस घर का कल्याण नहीं होगा? होगा या नहीं? होगा। इसलिए सभी लक्ष्य बना ले कि सारे दिन में 2 घंटा हमें देना है अविनाशी कमाई में, 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम। टाइम सबके पास है, कहाँ चला जाता है? एक नए व्यर्थ की जो चीज आ रही है हर एक के घरों में, टीवी। कई लोग क्या सोचते हैं, मन बहुत थक गया, टेंशन बहुत है आज, उलझन बहुत है, टीवी देख लो, मन डाइवर्ट हो जाएगा, मन बदल जाएगा, थोड़ा खुश तो हो जाएंगे। पर ये विचार कल्याणकारी नहीं है। क्यों? टीवी देखने से क्या नुकसान होगा? गहरी गहरी बात पर ध्यान देंगे, हम मोटी बात नहीं कर रहे। टीवी देखने से बुद्धि की एकाग्रता धीरे धीरे क्षीण होती है, ये बात समझ लेनी है। इस बात को जानते नहीं, ना मेडिकल साइंस जानते और ना और लोग जानते हैं। इसलिए तत्कालीन फायदा तो आपको लगेगा कि चलो टीवी देख लिए, 1 घंटा फ्रेश हो गए, वे विचार बदल गए, वो जो मन में तूफान चल रहा था शांत हो गया। लेकिन फाइनली अल्टीमेटली वो मन की एकाग्रता को डाउन करता है। अगले दिन ज्यादा बढ़ेगी बात, फिर आप 15 मिनट की बजाय 20 मिनट टीवी देखेंगे, और ये बढ़ते बढ़ते फिर आप कहेंगे टीवी के आगे बैठ के खाना भी खा लो। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, एक भाई ने शिकायत की, एक माताजी ने शिकायत की कि हमारे जो युगल हैं ज्ञान में तो बहुत पक्के, पर सारा दिन टीवी के आगे रहते हैं कि मैं यहीं बैठ के योग कर लेता हूँ, भोजन भी वहीं खाता हूँ। हो सकता है उनका योग होता भी हो, मैं इसमें मना नहीं करता, पर फिर भी ये बात बहुत अच्छी तो नहीं है कि टीवी के आगे बैठ के खाना भी खाएं और टीवी के आगे बैठ के ही योग भी। हालांकि मैंने भी एक माता को ये बात बताई, एक माता जो बहुत बड़ी घर की है, डायरेक्टर है, और उनकी अपनी फैक्ट्री है बॉम्बे की। अब उसकी समस्या ये थी, देखो उसके लिए ये बात थी, आप सबके लिए नहीं, फिर भी कहीं किसी को ऐसी समस्या हो तो मैं क्या उसका समाधान बताया। उसका पति, बुजुर्ग हैं लोग 60 साल के बाहर, लेकिन पति ज्ञान में नहीं है। पति को ये होता है कि हम बड़े आदमी हैं, तुम मेरे साथ होटल में खाना खाने चलो, सब पार्टियां होती है ना, फैक्ट्री है इनको बड़ी, भाई मेरे साथ सब फ्रेंड्स जा रहे हैं, तुम भी पिक्चर देखने चलो। और वो ये तो कहता ही है कि घर में मैं और तू दो ही हैं, वो बच्चा अमेरिका में है, मेरे साथ टीवी देखने बैठो। अब इन पे रहता था रोज उनका झगड़ा, झगड़े से हो गई थी माता की नींद खत्म। देखो समस्याएं कहां कहां बढ़ती है। अब वो टीवी देखती नहीं है क्योंकि बाबा की मर्यादा नहीं है, 4 घंटे में क्यों बैठू तुम्हारे, वो भी पावरफुल तो है, पति को दबा के रखती है पूरा। तो माताएं हंसेंगी मेरी बात सुन के, तो लेकिन टेंशन, घर में टेंशन, वो भी खुश नहीं। अभी ये जिस लक्ष्य के लिए टीवी नहीं देखती या पिक्चर में नहीं जाती कि स्थिति अच्छी रहे, इसी यही लक्ष्य है ना, पर स्थिति बिगड़ रही है, स्थिति बिल्कुल बिगड़ रही, नींद की प्रॉब्लम बहुत भयंकर रूप ले चुकी, और योग का तो फिर प्रश्न नहीं उठता। का 3 बजे तक सवेरे जागती रहती हूँ, मुरली पढ़ पढ़ के भी थक गई, कहाँ तक पढ़ू। नेचुरल है ना। तो मेरे पास अभी बाबा से मिलने आई थी तो मिली, मैं जानता नहीं था उसको, उसने फोन पे मेरे से बातें की 2-4 बार, तो मैंने उसे कुछ अभ्यास बताए, लेकिन साइकोलॉजिकली आत्मा तृप्त नहीं हुई क्योंकि पढ़ी लिखी बहुत, डायरेक्टर खुद है, पैसे वाले बहुत। अब मैं सोचा इसको कुछ और युक्ति सामने रख दी जाए, तो मैंने कहा ठीक है। वो कहता है ना मेरे साथ टीवी देखने बैठो, और तो कुछ नहीं कहता ना, उसे क्या पता तुम मन से क्या सोचती हो, ये तो उसके कंट्रोल में नहीं है ना। ठीक है, वो तुम आंख बंद करोगी तो वो कहेगा आंख क्यों बंद की है, टीवी देखो, ये भी समस्या थी। तो मैंने कहा टीवी पर जो भी एक्टर आ रहे हैं ना, तुम लक्ष्य रख लो उन्हें मुझे सकास देनी है 4 घंटे, तुम्हारा योग मोस्ट पावरफुल हो जाएगा। किया उसने, समस्या खत्म, दोनों राजी। वो खुश हो गया कि मेरे साथ बैठ के टीवी देख रही, उसका योग पावरफुल हो गया, घर में शांति होने से इसको नींद आने लगी, देखो कितना सुख मिला। तो कभी कभी हम लोग किसी चीज को टेंशन बना देते हैं ना। अब वही बात मैंने उसको पिक्चर के लिए गई, पिक्चर का वो अवॉइड कर देती है, कभी सबके साथ जाना पड़े तो मैंने कहा यही प्रैक्टिस आप पिक्चर देखकर करना, ये तो नहीं आप बूढ़े हो गए कि पिक्चर देख के आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। ठीक है, जिसको भी आप देख रहे हो पर्दे पे, समझो मुझ आत्मा से किरणें निकल कर इन पर पड़ रही हैं। तो हमें अपने घरों की समस्याओं को टेंशन न बना देना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि एक मर्यादा का पालन करने के लिए, मर्यादा का पालन तो हो जाता है पर स्थिति सारी बिगड़ जाती है। मर्यादा का पालन इसलिए हो रहा है कि स्थिति न बिगड़े। दूसरी एक बात सुना देता हूं, माताजी ज्ञान में, माताओं की बात है ज्यादा। बच्चे की शादी हुई, बहू भी किचन में आने लगी, अब इनका खाना शुद्ध, मान लो बहू ने कहीं हाथ लगा दिया, झगड़ा शुरू, मेरे खाने को हाथ क्यों लगाया। अब घर में अशांति, उनको अशांति, इसका योग नहीं लग रहा, अशांति में कहा सुनी होगी, लड़ाई होगी, बच्चा भी नाराज। तो हाथ लगाने से भोजन पवित्र हो जाएगा? माताओं से पूछ रहा हूं, भाइयों से नहीं, माताएं बताएं, हमारी पवित्रता या हमारा भोजन इतना कमजोर थोड़ा कि किसी ने देख लिया और बस गया। हमारी प्योरिटी इतनी कमजोर है क्या कि किसी को देख लिया और पवित्रता खत्म हुई, भाई मर गए हम तो। इतना नाजुक थोड़ा ही हमें बनना, हमारी पवित्रता तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना, बहुत बड़ी शक्ति है हमारे सामने। कलयुग के पवित्र वातावरण को हमने चैलेंज कर दिया है ना, तो हम किसी को देख लेंगे, किसी ने दृष्टि डाल दी भोजन पे, ब्राह्मणों की तरह के ब्राह्मण होते हैं ना, अरे इसने भोजन देख लिया, फेंको इस भोजन को, दूसरा बनाओ, तो ये तो होगा नहीं ना। तो हम सभी अपने विचारों को थोड़ा विशाल करें और छोटी बातों को घरों में टेंशन न बनने दें। एक माता की और ऐसी समस्या, उसके बुजुर्ग सास ससुर दोनों रहने के लिए पास में आ गए। अभी वो जो सास थी भगतिन तो बहुत अच्छी, लेकिन अपने नियम ये हैं कि भाई सवेरे लैट्रिन जाने के बाद नाना है, कपड़े बदलने। अब वो माताजी क्या करे कि लैट्रिन जाए और खाट पे आके बैठ जाए। अब इसकी स्थिति संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई, बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाली ये बहन और बिल्कुल खत्म हो गई। रोज कहा सुनी होने लगी, तुम्हें इतनी बार कहा कि कपड़े बदल के आया करो, मेरी खाट पे न बैठो, तुम बस कुछ कुछ कहना सुनना जो शुरू हुआ, घर में वातावरण बिगड़ गया। मेरे पास आई 2 साल पहले के, क्या करूं? मैं सिंपल कहा कि एक पुरानी चादर डाल दिया करो ऊपर, वो बैठे खत्म, उसको निकाल दिया, पानी से निकाल के डाल दिया, खत्म हो गई ना इसको समस्या, क्यों बनाया हुआ। मान लिया उसने, घर में शांति हो गई, छोटी सी बात है ना। तो यदि हम अपनी समस्याओं को सहज भाव से हल करें, आप रहते हैं ग्रस्त में, आप ऐसे संसार में रहते हैं कि एक ज्ञान में चलता है बाकी नहीं चलते, कोई विरोध करने वाला, कोई गाली देने वाला, ऐसा न हो कि हम अपने मन की शक्ति को नष्ट करते रहें एक छोटी सी बात के पीछे। इसलिए मन के संकल्प हमें नष्ट नहीं करने हैं, पहला लक्ष्य ये बना लें, दूसरा लक्ष्य बना लें कि कुछ भी हो जाए स्थिति बिगाड़नी नहीं है। बाकी सब चीजें आप ही ठीक हो जाएंगी। ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना है। अब उस घर में यही हुआ कि जब वो माता जी अब बैठने लगी, आके वो बुजुर्ग हो गए, उसको दिखता भी कम है, बैठने लगी वो, इसने चादर धोना शुरू किया। धीरे धीरे घर में शांति हुई और वो माता जी खुद कहने लगी, बहू आजकल तो तुम गुस्सा नहीं करती, सब कुछ बदल गया। फिर अब इसका गुस्सा न होना उस पर प्रभाव डाला, वो सहयोगी बन गई। अब उसने छोड़ दिया वो, तो हम सभी स्थिति न बिगड़ने दें छोटी बातों से, इस पर बहुत ध्यान देना। सभी लिस्ट बनाएंगे जिस कारण से व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हों। ऐसे आप तीन कारण देख लें अपने को चेक करके, उसके लिए श्रेष्ठ संकल्प अपने जीवन में धारण करने हैं। पावरफुल संकल्प जो सहज ही हमें निर्संकल्प करे। एक स्थिति ये है कि व्यर्थ संकल्पों को हमें समाप्त करना है, लेकिन सुंदर स्थिति ये है कि व्यर्थ संकल्पों का फोर्स हमारे जीवन में आए ही नहीं। ये कैसे होगा कि सवेरे ही बाबा ने कभी इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, तब से हमारी ये बात समझ में आई थी। ये बात बहुत पुरानी है, 35 साल पुरानी। बाबा ने कहा जैसे ट्रेन को एक बार पटरी पर सेट कर दिया जाता है ना, फिर बार बार ये देखना थोड़े पड़ता है दोनों पर ये पटरी पर चल रहे या नहीं, वो तो कभी गिर ही जाए तो ही होता है, नहीं तो चलते ही है ना वो। सवेरे ही अपने मन की जो ट्रेन है इसको कुछ अच्छे संकल्पों की पटरी पर सेट कर दो तो चलती रहेगी बहुत समय। तो हमें ये ख्याल रखना है कुछ स्वमान, कुछ पावरफुल संकल्प, कुछ मन को आनंद देने वाले संकल्प, शरीरीपन, ये ऐसे अभ्यास हैं जो हमारे मन को सवेरे सवेरे ठीक पटरी पर सेट कर देंगे। आपको याद दिलाएं बाबा ने कभी एक मुरली चलाते हुए बहुत अच्छी तरह ये बात क्लियर की कि सवेरे उठकर रोज अपने को कुछ संकल्प दो। उदाहरण दिया, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, ये तिलक लगा दो मस्तक पर यानी स्मृति में ले आओ तो सारा दिन निर्विघ्न रहेंगे। इससे हम सीखें कि सवेरे सवेरे जिस स्मृति को हम पावरफुल रूप से अपने अंदर ले आएंगे उसका प्रभाव कई घंटे चलेगा, सारा दिन भी चल सकता है, पहले 2 घंटे चले फिर 4-8 बढ़ता जाएगा। तो अच्छे संकल्प सवेरे ही अपने मन की स्मृति में भर देने हैं, और अच्छे अच्छे संकल्पों की सभी लिस्ट बनाएंगे जो हमें निर्संकल्प रखें, जो हमें हल्का बनाए जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में। जैसे मैंने वो बात आपको कही कि जो आत्मा श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा सुख लेना जान जाए वो बहुत बुद्धिमान है। दूसरी बात ऐसी, जिस आत्मा ने संगम युग पर स्वयं को बिल्कुल हल्का कर दिया हो, जो विभिन्न परिस्थितियों में हल्का रहना सीख गए हो, वो भी बहुत बुद्धिमान है। भारी करने वाली बातें तो हजारों आ सकती हैं जीवन में, लेकिन हल्का करना ज्ञान के बल से, योग स्वमान के बल से, ये विवेकशीलता है। तो हम चेक करेंगे अपने को, हर चीज की दवाई बाबा ने दी हुई है, ये व्यर्थ संकल्प चलता है, ये चलाओ अच्छा संकल्प। देह की ओर संकल्प जाता है ये सोचो, निंदा हो गई संकल्प चलते हैं ये सोचो, किसी ने कड़वे वचन बोल दिए ये सोचो, प्राय अपमान को सहना सबसे कठिन काम होती है ना, दूसरों के कड़वे बोल सुनकर कोई निर्संकल्प रह जाए कठिन काम है। तो उस समय दूसरों के बोल पर ध्यान देने की बजाय क्या सोचेंगे, प्रैक्टिकल में ये होता है ना, उसने जो बोला वो तीन लाइन बार बार आ रही हैं, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे बार बार बार। योग में बैठेंगे तो और ज्यादा कि अच्छा तुम्हें योग करने देती हूं अब, तो एक छोटा सा परिवर्तन कर दें कि मैं इस आत्मा की बातों को याद कर रहा हूं, अब याद करूं भगवान ने क्या कहा है, कि यदि कोई ऐसा बोल दे तो क्या सोचो। बस ये संकल्प परिवर्तन करेंगे तो व्यर्थ समाप्त होगा। लक्ष्य रख ले सभी के इस व्यर्थ की अग्नि को बुझा देना है अपने चित्त से, और शेष संकल्पों के द्वारा सुख लेना है। ओम शांति।
Oh.